जब मैं कॉलेज में था तब मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं एक लड़की से मिला और वो लड़की बिल्कुल भी मेरा टाइप नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तरह फिट हो और उसके लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उस लड़की को फिटनेस में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पसंद थी लंबी लड़कियाँ, लेकिन वो लड़की ज़्यादा लंबी भी नहीं थी और जो हमारे इंटरेस्ट थे, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते थे, उनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने मेरे को कोई ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया, और वो चीज़ थी वैलिडेशन। और सोचो, उस समय पर मैं इतना ज़्यादा पागल था कि जब उस लड़की का बर्थडे आने वाला था, उससे 2 दिन पहले ही मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा था, तो मैंने पैसे जमा करने शुरू करे और मैंने ऑनलाइन जाकर कोई बढ़िया सा महंगा सा गिफ्ट मंगाया और मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं दिया। और मैं उसी लड़की को खुश करने में लगा रहा जिसने कभी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं करा। साउंड्स फेमिलियर, राइट? ऐसा तब होता है जब हम अप्रूवल सीक कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ से या फिर किसी इंसान के थ्रू अपने अंदर मौजूद खोखलेपन को भर सकते हैं। और जब आपको ज़रा सी भी भनक लग जाती है कि शायद ये इंसान मेरे अंदर मौजूद एम्प्टीनेस को दूर कर सकता है या फिर शायद ये इंसान मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकता है, तो आप अपनी बाउंड्रीज गिरा देते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचा कर लेते हो और जो लोग आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आप उनकी अहमियत भी भूल जाते हो। लेकिन ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे बचपन से, क्योंकि कोई भी इंसान एक अप्रूवल सीकर या फिर एक नाइस गाय या फिर एक टॉक्सिक और अग्रेसिव गाय पैदा नहीं होता। ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स बनाए जाते हैं, ये हमारे पेरेंट्स हमें प्रोग्राम करते हैं कि अगर तुम्हें दूसरों की अटेंशन चाहिए, अगर तुम्हें हमारा प्यार चाहिए, तो एक सर्टेन वे में तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा। और यही डिफरेंस होता है एक गुड और बैड पेरेंटिंग में। जब भी पेरेंटिंग अच्छी होती है तब एक बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि वो जैसा है वो वैसा ही ठीक है और उसमें कोई इनहेरेंटली डिफेक्ट नहीं है, उसे खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है लोगों को प्लीज करने के लिए। और इस तरह का बच्चा अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी पर्सनैलिटी के साथ सिक्योर होता है। लेकिन दूसरी तरफ बैड पेरेंटिंग एक बच्चे के दिमाग में ये डाल देती है कि उस बच्चे में कोई कमी है और अगर उसे दूसरे लोगों का प्यार चाहिए तो उसे कॉन्स्टेंटली खुद को चेंज करते रहना पड़ेगा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम खुद के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपनी पेरेंटिंग को ब्लेम करके बात को वहीं पर खत्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंटिंग दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जॉब होती है एंड इट इज़ रियली ईजी टू मैस इट अप। ऊपर से अगर हम एक बच्चे को देखें तो बच्चे की साइकी तब डेवलप ही नहीं होती, उसमें इतनी समझ ही नहीं होती और वो किसी भी सिचुएशन के साथ ईजिली एक नेगेटिव मीनिंग जोड़ सकता है और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी लेंस के साथ सबको देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बचपन में आपके दोनों पेरेंट्स ही काम पर जाते थे और वो पीछे आपको आपके दादा दादी के पास या फिर आपके किसी गार्डियन के पास छोड़ जाते थे, तो एक बच्चे को जस्ट बिकॉज प्यार चाहिए होता है आपको ईजिली ये थॉट आ सकता है कि यार मेरे पेरेंट्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे से पहले काम क्यों आता है, वो मेरे पर उतना ध्यान क्यों नहीं देते जितना वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, क्या मेरे में कोई कमी है? हाँ, शायद मेरे में ही कोई कमी है और मेरे को खुद को चेंज करना चाहिए, मेरे को अपनी हर फ्लॉ को हर कमी को दबा लेना चाहिए ताकि मेरे को सबका प्यार मिल सके। बच्चा इतना नहीं सोचता कि उसके पेरेंट्स बाहर जाकर शायद इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि उसकी लाइफ उनसे बेहतर हो, वो बस ये फील करता है कि उस पर उतनी अटेंशन नहीं है, उसे उतना टाइम नहीं दिया जा रहा और वो तभी से एक मुखौटा पहनना शुरू कर देता है नाइस होने का। एक मूवी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है जिसका नाम है स्कारफेस, और उसमें एक सीन है जहां पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक ड्रग डीलर होता है और वो अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है, तो अपनी वाइफ को गुस्सा करते हुए बोलता है कि तू हमेशा ड्रग्स ले रही होती है, तू कुछ भी खाना ढंग से नहीं खाती ताकि तू अपने फिगर को मेंटेन कर सके, किस टाइप की औरत है तू? और वो भी फिर चिढ़ जाती है और वो सबके आगे उसको बेइज्जती करते हुए बोलती है कि तू भी मेरे से कोई बेहतर नहीं है, तू ड्रग्स बेचता है लोगों को, तेरे को पता है तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, और ऐसा बोल के वो सबके आगे बेइज्जती करके चली जाती है। बट जो इंसान होता है, जो ड्रग डीलर होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, जो सिविल लोग होते हैं सपोजिटली, जो नाइस गाय होते हैं, वो सब जज कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें गुस्से में बोलता है कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान चाहिए ताकि तुम मेरी तरफ इशारा करके बोल सको कि ये है बुरा इंसान। लेकिन ये चीज़ तुम्हें क्या बनाती है? तुम क्या सोचते हो तुम कोई अच्छे इंसान हो? तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बस अपनी बुराई को छुपाना जानते हो और तुम झूठे लोग हो। और मेरे हिसाब से यही बेस्ट डेफिनेशन होती है एक नाइस गाय की। एक नाइस गाय एक्चुअल में कोई नाइस नहीं होता, बल्कि उसकी प्रोग्रामिंग उसे ये बोलती है कि अगर उसे दूसरों का अप्रूवल चाहिए, अगर उसे दूसरों का प्यार चाहिए, तो उसे नाइस होने का दिखावा करना पड़ेगा। और ऊपर से आजकल का माहौल कुछ ऐसा है कि हर कोई सच बोलने से डरता है, कैंसिल कल्चर है, लोगों को फोर्स करा जाता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, वरना जहां पर भी वो जॉब करते हैं वहां पर दिक्कत आ सकती है और लोग उन्हें ऑनलाइन जाकर बॉयकॉट कर सकते हैं। और इन्हीं डरों की वजह से मॉडर्न कल्चर ने लोगों को ओवरली सबमिसिव, ओवरली नाइस और अप्रूवल सीकर्स बना दिया है। सो हाउ टू स्टॉप बींग नाइस ऑल द टाइम? किस तरह से हम दूसरे लोगों को खुश करने और हर समय अपने सच को दबाते रहने की आदत को ओवरकम कर सकते हैं? स्टेप नंबर 1, कलेक्ट डेटा ऑफ योर पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। बिकॉज जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं आपको ये लग सकता है कि आप इतना पानी में नहीं हो, मे बी मैं किसी और इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, मे बी मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन आप बस कभी कभी लोगों को ना नहीं बोल पाते हो, कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो जाते हो, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन ये जो नाइसनेस की प्रॉब्लम होती है सरफेस पर ये बहुत छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसको फॉलो करते हो, डीप जाते हो, आपको पता लगता है कि यार नीचे तो एक अलग ही राक्षस बैठा हुआ है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे थोड़े टाइम पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिम में वर्कआउट कर रहा था और एक बंदा आता है वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स की गली में ही रहता है, और वो सबसे बहुत अजीब तरह से ग्रीट कर रहा था। जैसे जब वो हैंडशेक कर रहा था तो वो काफ़ी झुक के काफ़ी सबमिसिव सा होके सबसे हाथ मिला रहा है, और जब वो मेरे पास आके मेरे से बात कर रहा है बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा है, वो ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं पा रहा। अगर वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा है तो स्माइल भी बहुत छोटी है। तो उसके जाने पर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या स्टोरी है इसकी, कुछ है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ? तो वो कहते कि नहीं, तू ओवर थिंक कर रहा है, गलत जज कर रहा है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ऐसा पूछ रहा है तू, स्टोरी क्या है इसकी? तो मैंने उनको बताया कि जिस तरह से लोगों को ग्रीट कर रहा है, इतना झुक के ग्रीट कर रहा है, ज़्यादा ये बोल भी नहीं पा रहा है, चल रहा है तो इसके स्टेप्स बहुत चिपके चिपके हैं, मतलब पैर भी ये फैला नहीं पा रहा है, बहुत छुपने की कोशिश कर रहा है सबसे। तो उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा बताया कि हाँ वैसे ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन इसमें बस एक ही कमी है, ये अल्कोहलिक है। और मैं उस टाइम हंसते हुए उनको बोल रहा हूँ कि तुम इन दोनों चीज़ों को साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक जगह पर बोल रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, बस ये बहुत अल्कोहल पीता है, ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। और थोड़ा सा और पूछने पर उन्होंने मेरे को ये बताया कि इसके पापा ने इसके बचपन में ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर ली थी, और ना उसको पता है कि उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो उसके ट्रॉमा से जुड़ा हुआ है, और ना ही मेरे फ्रेंड्स ये समझ पाए कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही कॉलेज में एक मेरा दोस्त था जो सरफेस पर सबके साथ स्वीट था, सबके साथ काइंड था, एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंड, एनवायरनमेंट को बचाना है, फीमेल राइट्स को प्रमोट करता रहता है, और एक दिन वो मेरे को खुद बताता है कि सौरभ तेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा दबा हुआ है, और तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या क्या करता हूँ जब वो गुस्सा बाहर आने की कोशिश करता है। और एक बार मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने बहुत स्ट्रेंज चीज़ बोली जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। उसने मेरे को बोला कि कोई भी मेरे साथ खेलता नहीं है, और उस समय मेरा मुँह खुला का खुला रह गया, और मेरे को लगा कि ये है तेरा ट्रॉमा, इस वजह से तू सबके साथ इतना स्वीट है, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था और उसको ये लगता था कि कोई भी उसका कज़न उसके साथ खेलना नहीं चाहता, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, तो उसने एक मुखौटा पहनना शुरू कर दिया कि देखो यार मैं तो स्वीट हूँ, मैं तुम्हें कोई हार्म थोड़ी कर सकता हूँ। इसी तरह आपकी नाइसनेस अलग अलग तरह से बाहर निकल कर आएगी, इसलिए खुद के हर बिहेवियर और खुद के हर थॉट को क्लोजली ऑब्जर्व करो, और खुद से क्वेश्चन करो कि क्यों आप इतना ज़्यादा नाइस हो, क्यों आप हर एक को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हो, क्यों आपने अपनी हर कमी और अपनी हर गलती को छुपा रखा है, और क्या हो जाएगा अगर दूसरे लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर ये सारी कमियां हैं? क्या मोटिवेशन है आपको अपनी कमियों को छुपाने का? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ बचपन में? अपने सारे बिहेवियर्स को कलेक्ट करो, उसका सारा डेटा बनाओ कि मैं उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा था, मैंने ऐसा किया, मैं झुक के बात करता हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है, हर चीज़ को लिखो जो भी आपको लगता है कि आपका फ्लॉ है या फिर ये आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, और उसे रिलेट बैक करने की कोशिश करो अपने चाइल्डहुड के साथ। स्टेप नंबर 2, बी असर्टिव एंड पुश बैक। आपको ना तो एक एक्सट्रीम में जाकर एक बहुत नाइस गाय बनना है जो हर समय दूसरों की मदद कर रहा होता है, और ना ही आपको दूसरे एक्सट्रीम पर जाकर एक एसहोल बनना है जो हर समय दूसरों को तंग कर रहा होता है। आपको वो इंसान बनना है जो आप असल में हो। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि मैं वो कैसे बनूं जो मैं हूं, मैं अपनी पोटेंशियल को कैसे जानूं, मैं रियलिटी के पास कैसे आऊं? और रियलिटी के पास आने का मेन तरीका यही होता है कि जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, जो भी बचपन से आपको सिखाया गया है, जो भी आपको बताया गया कि दुनिया ऐसे काम करती है, जिंदगी ये होती है, जो भी आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स डाले गए हैं, बस उनसे खुद को दूर कर लो और जो आप हो आप उस तक पहुंच जाओगे। नाउ अगर आप ये क्वेश्चन करो कि मैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कैसे करूं, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि मेरी प्रोग्रामिंग है ये और ये सच नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। इमेजिन करो कि आपकी तरफ अलग अलग पाइप्स आ रहे हैं, अलग अलग पाइप्स हैं जो लाइफ के अलग अलग एरियाज हैं। एक पाइप है रिलेशनशिप का, एक पाइप है फाइनेंसिस का, एक है हेल्थ का, ऐसे अलग अलग पाइप्स हैं और हर पाइप का फ्लो अलग है। कई पाइप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो कर रहे हैं, कई जो हैं उनमें से बहुत कम फ्लो आ रहा है, और कई पाइप्स पूरे ब्लॉक्ड हैं। और जिस भी पाइप में फ्लो कम आ रहा होता है या फिर वो पाइप पूरा ब्लॉक्ड होता है, वो यही चीज़ बता रहा होता है कि आपके लाइफ के इस एरिया में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर कोई ट्रॉमा है, यहाँ पर कोई आपकी चोट है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको आपने अभी तक समझा नहीं है। जैसे अगर आपके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है तो उसका मतलब यह है कि जो आपकी तरफ पैसों का पाइप आ रहा है उसमें आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने कुछ फालतू की चीज़ें डाल रखी हैं, जिस वजह से ये पाइप ब्लॉक हो चुका है और आपकी तरफ कोई पैसों का फ्लो ही नहीं आ रहा। और अगर आप अपने इस पाइप को क्लीन करना चाहते हो तो आपको रियलिटी के पास आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पैसा क्या है, पैसा क्या नहीं है, क्या आपके झूठे बिलीफ जुड़े हुए हैं पैसों के साथ। आपको अपने मन से पैसों से रिलेटेड हर गंदा बिलीफ निकाल के फेंकना पड़ेगा और आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये रियलिटी होती है पैसों की। लेकिन बहुत से लोग खुद की डेस्टिनी को चेंज करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं दूसरों के जजमेंट से। जैसे अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनके अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हो, लेकिन आप डरते हो कि यार अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को जज करेंगे, मेरी जो एक्स पार्टनर्स थी वो मेरे पे हंसेंगी, या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो मेरे को देख के बोलेंगे कि यार इसके पास तो और कुछ काम ही नहीं है, ये खाली बैठ के बस वीडियोस बनाता रहता है। और जब भी इस तरह से आपको किसी की जजमेंट कोई भी एक्शन लेने से रोक रही होती है, तब उस चीज़ को एक पेपर पर लिख कर देखो। जैसे आप लिख सकते हो कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा क्योंकि रोहित मेरे को जज करेगा, या फिर मैं कॉन्टेंट क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि आकांक्षा मेरे पर हंसेगी। और एक बार जब आप पेपर पर लिखोगे और अपने थॉट्स से एक डिस्टेंस मेंटेन करके उनको देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि यार ये तो कितनी फालतू की बात है, मैं अपने गोल्स को चेज नहीं कर रहा क्योंकि ये लोग मेरे को जज करेंगे और ये लोग हैं क्या मेरे आगे, फालतू की बात है। यही तरीका होता है खुद के बिलीफ्स और थॉट्स से दूरी बनाकर अपनी रियलिटी तक पहुंचने का। इसी वजह से मेडिटेट करते हैं लोग, और इसी वजह से नाइस लोगों को ये एडवाइस भी दी जाती है कि अगर आपको दूसरे लोगों को ना बोलने में मुश्किल आती है तो थोड़ा रुक कर जवाब दो, पॉज लो और फिर कुछ बोलो। जैसे अगर एक इंसान आपके पास आकर आपको ये बोलता है कि आप उसे 2000 रुपये उधार दे दो, तो जो आपकी ट्रेनिंग है उस वजह से आप बिल्कुल बिना सोचे समझे यही बोल दोगे कि हाँ यार दे देता हूँ, मेरे पास पड़े हैं, कोई बात नहीं बाद में दे दियो। लेकिन अगर आप 2 सेकंड पॉज लेते हो तो आप अपनी ट्रेनिंग को ओवरराइड करके जो आप एक्चुअल में काम करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। इसी तरह जब भी आपको कोई बात बोलने की ज़रूरत है अपनी बात को सामने रखो, और जब भी आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है तब भी बस पॉज लेके फिर बोलो। स्टेप नंबर 3, लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एक नाइस गाय खुद को ही प्यार नहीं करता, वो खुद के इतने सारे पार्ट्स को रिजेक्ट करके बैठा होता है, और तभी आप ऐसे इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको प्यार करे और वो आपकी टोटैलिटी को एक्सेप्ट करे। जिस वजह से जब भी आप एक नाइस इंसान के साथ प्यार में आते हो तब शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है वो, लेकिन जैसे जैसे उसको आपकी कोई भी कमी बाहर आती हुई दिखती है तब वो आपको हेट करने लगता है, क्योंकि वो अपनी कमियों को हेट करता है, और जैसे ही वो आपको देखता है कि यार आप में भी कमी है तब वो आपके खिलाफ हो जाता है। इस तरह के लोगों का प्यार स्ट्रिंग्स के साथ अटैच जाता है, और वो हर समय मेजर कर रहे होते हैं कि यार मैंने उस इंसान को इतना ज्यादा प्यार दिया लेकिन उसने मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, या फिर उसका प्यार मेरे प्यार से कम था। और ये एक बहुत कॉमन साइन होता है उन लोगों का जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा गंदी होती है और उनका ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के लोगों का प्यार लेजर पॉइंटेड होता है, बहुत फोकस्ड होता है। लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं उन लोगों का प्यार एक फाउंटेन की तरह होता है जो ओवरफ्लो कर रहा होता है, और वो हर दिशा में जा रहा होता है, हर इंसान को उनका प्यार मिल रहा होता है। लेकिन जो लोग नाइस होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, उनको पता होता है कि यार मेरा प्यार ऑलरेडी बहुत कम है तो मैं हर किसी को प्यार नहीं दे सकता हूँ, तो वो बहुत ध्यान से बहुत चुनकर देखते हैं कि कौन सा इंसान वापस से मेरे को प्यार दे सकता है, किस इंसान का प्यार मैं चुरा सकता हूँ, और वो बस उन्हीं लोगों को प्यार देते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना। एक हेल्दी इंसान का प्यार सागर की तरह होता है जिसमें से 2-3 बाल्टी प्यार अगर कोई लेकर जा भी रहा है तो आप कंप्लेन नहीं करोगे कि यार वो देखो ये प्यार मेरा चुरा कर ले जा रहा है। आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, इनके पास प्यार नहीं था तभी ये मेरा प्यार चुरा कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास प्यार की कमी थोड़ी है, आपको इस लेवल पर आना है। स्टेप नंबर 4, डोंट लिसन टू नाइस गाइज। अगर आपके पेरेंट्स को ऑलरेडी उनके रिलेटिव्स ने धोखा दिया हुआ है और आप अपने पेरेंट्स की हर बात सुन लेते हो तो आपके रिलेशनशिप्स का आगे चलकर क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हो। जो भी लोग नाइस होते हैं, जो लोग बाहर से बहुत भोले होते हैं और उन्होंने अपने सारे गुस्से को, सारी कड़वाहट को छुपा रखा होता है, वो कभी भी रियलिटी को एज इट इज समझ ही नहीं सकते हैं। वो कभी भी रियलिटी का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आपको दे ही नहीं पाएंगे। रियलिटी का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और वो बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं, उनके बीच में डिवाइड नहीं होता। जिस तरह से वो आपके सामने होते हैं वो वैसे ही दूसरों के सामने होते हैं। अगर आपके पास इस तरह के लोगों का एक्सेस नहीं है तो मिनिमम चीज़ जो आप कर सकते हो वो यही है कि फालतू के लोगों की बात सुनना बंद करो। स्टेप नंबर 5, फाइंड योर लाइफ मिशन। जिस मोमेंट पर आप अपने मन को ये बोलते हो कि आपको कई चीज़ों की परवाह नहीं करनी, जैसे आपको ये नहीं सोचना कि लोगों की जजमेंट आपके बारे में क्या है, आपको ये परवाह नहीं करनी कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, आप इन सारी फालतू की चीज़ों को अपने मन से बाहर निकालना चाहते हो, तब उसी मोमेंट आपका मन ये बोलता है कि ठीक है इन सारी चीज़ों को मैं अपने मन से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन इनको तू किस चीज़ से रिप्लेस करेगा? क्योंकि मन को कुछ ना कुछ पर्पस चाहिए, वो किसी ना किसी चीज़ की तरफ काम करते रहना चाहता है, और अभी वो काम कर रहा है दूसरों को प्लीज करने के लिए। और अगर आप अपने इस बिहेवियर को ओवरकम करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस बिहेवियर को मार नहीं सकते हो, आपको इस बिहेवियर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक हायर पर्पस के साथ। इसलिए कॉन्शियस प्रायोरिटी सेट करो। अभी आपका मन आपको बोल रहा है कि आपकी पूरी सेल्फ एस्टीम और पूरी आइडेंटिटी ही इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि आप दूसरों को प्लीज करो और वापस उनसे कुछ मिले तो आप उसी से खुश हो सकते हो बस। लेकिन ये अकेली आपकी हैप्पीनेस का और अपनी फुलफिलमेंट का सोर्स नहीं है, आप फुलफिल हो सकते हो सिर्फ अपने ऊपर काम करके भी। स्टेप नंबर 6, डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। इस एपिसोड की शुरुआत में ही मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को गिराया था तब आगे चलकर मैंने अपने इस एक्शन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करा था। और ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है जब मैंने किसी नाइस गाय को अपने दोस्त बनाने की कोशिश की और मैंने सोचा कि हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे, तब हमेशा ही मेरे को धोखा मिला। बिकॉज नाइस लोग किसी के नहीं होते, ना आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ना आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, ना ही वो आपसे सच बोलेंगे, और वो आपके साथ कुछ और होंगे और दूसरों के साथ कुछ और, बिकॉज उन्हें हर एक के आगे अपने नंबर बनाने होते हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं आपके दिमाग में कैसे गाड़ कर ये बात डालूं कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स कभी नहीं गिराने हैं। जब भी आप अपने स्टैंडर्ड्स को गिराओगे और कोई फालतू का काम करोगे या फिर फालतू के लोगों को अपने सर्कल में इनवाइट करोगे, तब ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप आगे चलकर अपने उस एक्शन को रिग्रेट करोगे। अगर हम इन सारे स्टेप्स को एक स्टेप में डालने की कोशिश करें तो वो होगा फाइंड योर ओन वॉइस। अभी आपके मुंह से आपके पेरेंट्स कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन से आपका एजुकेशन सिस्टम कुछ सोच रहा है और आपके बिलीफ से आपकी सोसाइटी कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। और अगर आप अपनी नाइसनेस या फिर अपने पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को ओवरकम करना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं होगा कि और बेहतर इंसान बन जाओ। नहीं, आपको बस इन सारी प्रोग्रामिंग्स को हटाना है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, और जो आप हो बस उसके पास पहुंचना है।